ड्रायर है। तौलिए से बाहर रगड़ते विनीता उसके निकट आ खड़ी हुई। आलमारी के ऊपर वाले खाने में देखो, चाय की ट्रे ले वह उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। चाय पी लो पहले, एकदम गीले बालों में ड्रायर का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। ड्रायर मेज पर रखकर नीता बालों में तौलियां लपेटकर बिस्तर पर जा बैठी। उसने चाय का प्याला नीता की ओर बढ़ाया। नीता विचार मग्न सी घूंट भरने लगी। आई थी अंकू से लड़ने। प्रयोग के शो के बाद से वह एक तरह से खौखी आई हुई बैठी हुई है कि अंकू न शो खत्म होने के बाद उससे मिली, न दूसरे रोज उसने उसे फोन ही किया। सभी लोगों ने आम्रपाली का अनुबंध प्राप्त करने के लिए उसे हार्दिक बधाई दी, परिचित अपरिचित दोनों ही ने। कितना आहत हुई है अंकू के अप्रत्याशित व्यवहार से। ऐसा क्यों होता है कि भीड़ की जय जयकार से घिरे हुए होकर भी किसी एक की अनुपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण हो उठती है कि वह उत्तेजना के ऊपर उड़ते हुए गुब्बारे को सिगरेट की सुलगती टीप सी छू देती है। शो के बाद तुम अचानक गायब कहाँ हो गई? नीता से अब और अधिक धैर्य नहीं रखा गया। चुभी फांस खींचनी जरूरी है। अंकु खामोशी से चाय की चुस्कियाँ भरती रही, असमंजस में दाखिल हुई सी। वाद विवाद की उत्तेजक अप्रियता के प्रति कतई निरुत्साहित। उसके मौन में नीता को अपने प्रति एक किस्म का उपेक्षा भाव खिलखिलाता महसूस हुआ। मैं नहीं मानती कि उस रोज तुम्हें जल्दी थी, कहीं जाना था। अगर ऐसा होता तो तुम अपने कार्यक्रम के विषय में अवश्य बताती। मैंने तुमसे यह भी आग्रह किया था कि अपने इस सफलता को मैं तुम्हारे संग उत्सवित करना चाहती हूँ, मैं, तुम और सुधीर। उसने निर्मेष दृष्टि से उसे देखा। सुधीर जी की उपस्थिति का संकोच था या मेरी सफलता हजम नहीं हो पाई या कोई और कारण था। खाली हुए कप ट्रे में सरकाती हुई वह बिस्तर पर से उठने लगी। ट्रे बाद में भी उठाई जा सकती है। मैं दीवारों से बतियाए नहीं आई हूँ अंकु, न हाँ हूँ मैं जवाब सुनने। उसे अनुमान हो गया कि बात को आई गई करना मुमकिन नहीं। यही सोचकर अब तक उड़धांग दबाए रही थी कि समयावधि उसके भीतर की भवक को अपने आप शमित कर देगी। तय था कि अगर वह औपचारिकता निभाने फोन पर उंगलियां रखती या मिलती, औपचारिक हो न पाती और स्वयं को संयमित रख पाना कठिन हो जाता। कोई चीज उसे सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं लगती। अच्छी बुरी है तो क्यों अच्छी बुरी है, उसकी मीमांसा जरूरी प्रतीत होती है। नीता सफलता और प्राप्ति की जिस सीढ़ी पर जा खड़ी हुई है उसकी कोई भी विवेक सम्मत बात उसे ईर्ष्या प्रतीत हो सकती थी, वह अन्यथा ले सकती थी, उसे गलत समझ सकती थी। ऐसे में संबंध मनोमालिन्य तक ही नहीं टूटने की हद तक खींच सकते थे। सफलता का मन बड़ा नादान होता है और असहिष्णु। शायद सफलता का उद्दाम एक अवधि तक जी लेने के बाद उतरती बाढ़ के नग्न सत्य सा। मनुष्य अपनी तलछटी की ओर दृष्टि टिका सकता है, तटस्थ हो अनुभव कर सकता है, चेहरे के छद्म टटोल सकने में समर्थ हो सकता है। इन मुखौटों को जिन्हें वह अपनी पहचान की शोध यात्रा के दौरान असली के भ्रम में एक के बाद एक चढ़ाता चलता है। लेकिन लगता है नीता शो से अब तक बाहर नहीं निकल पाई। किसी चीज पर कुंडली मारे बैठे सर्प सी सारा ध्यान उसी पर एकाग्र किए, वरना यह अशिष्टता कभी न कर पाती कि जो मुंह में आया बक दे। कई दफे लगता है उसके और नीता के दरमियान एक अलंग खाई खुदी हुई है, वैचारिक, जिसे वे गहरे अनुभूत करते हुए भी पाठ पाने में असमर्थ हैं। नाश्ता अभी लोगी? उसने फिर भी बचना चाहा। बालों को कंघे से सुलझाती हुई नीता ने हाथ रोककर उसे घूरा। कारण जानने के बाद बहलाने की कोशिश व्यर्थ है, मैं आहत हुई हूँ। जानने के पश्चात क्या उस बात का तुम्हारे लिए कोई महत्व होगा? बिना जाने कैसे बता सकती हूँ। कंघा एक ओर रखकर नीता पुनः तौली से गीले बालों को रगड़ने लगी। लेकिन मुझे अनुमान है, अंतर्यामी कब से हो गई? कोई विश्लेषण संभव नहीं। पहेलियों में बातें मत करो अंकु, ठीक? छोड़ दी पहेलियां। आम्रपाली का अनुबंध प्राप्त करने की शर्त कपड़े उतारकर सागर तट पर दौड़ना था क्या? ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नहीं थी तो आखिरी सीमा तक कपड़े कम करने की कौन सी व्यवस्था टकरा गई तुमसे? तुम खूबसूरत हो, सेक्सी हो या कपड़ों के बावजूद छिप नहीं पाता। जरूरी है रातों रात नंबर वन का दर्जा हासिल करने के लिए वह सब करना जो एक स्त्री के लिए ही नहीं संपूर्ण स्त्री समाज के लिए अशोभनीय और लज्जा का विषय है। किन जीवन मूल्यों को जीना चाहती हो तुम? किनकी वकालत कपड़े उतार कर रही हो तुम? आपाद मस्तक ढकी हुई वह इस समाज में इज्जत से रह नहीं पा रही। कपड़ों में न देखकर उनकी लोलुपता अधिक बलात्कारी नहीं हो उठेगी? लोगों की दृष्टि में लपलपाती उत्तेजना तुम तालियों की गड़गड़ाहट में महसूस नहीं कर पाई। महसूस कर पाती तो शायद लज्जित होकर अपनी ही बाह में मुंह गड़ा लेती कि इन दृष्टियों को चीर कर न जाने कितनी जोड़ी उंगलियां लपक कर उन तनियों का फुदना खींच लेने के लिए विकल हो रही थी जो नाम मात्र को ही सही तुम्हारी देह के उभारों पर आड़ बनाए हुए थी। मैं नहीं झेल पाई, नहीं झेल सकती। लगा था कि हाल में उजाला होते ही कहीं ये लोलुप उंगलियां मेरी देह पर फूदने न टटोलने लगे। हूँ, कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही हो तुम इन फिल्मों को लेकर। भावुक? उसकी भावों पर बल सिमट आए। भावुक ही उन कपड़ों को पहनकर जब मैं किसी प्रकार संकोच और अश्लील भाव से ग्रस्त नहीं होती या मेरी तरह की अनेक स्त्रियां तुम क्यों कर ऐसा महसूस कर रही हो समझ पाने में असमर्थ हूँ। न लज्जा, न अभद्रता, न प्रदर्शन, न स्त्री की अस्मिता की नीलामी, न उसकी सामाजिक छवि को दूषित करने की कुचेष्टा, कोई मंतव्य नहीं था मेरा ऐसा। दरअसल तुम उन छद्म महिला सामाजिक संगठनों जैसी दकियानुषी भावना और भावुकता से आक्रांत हो जो अपने स्वार्थ पुजाने और नेतई स्थापित करने की फिराक में बिकनी और मीडी से झांकती टांगों से स्त्री की अस्मिता खतरे में पड़ता हुआ महसूस करती हैं। हाथों में तख्तियां, ताने, नारे कसती हुई पोस्टरों पर काली पोतने निकल पड़ती हैं, धरने देती हैं, स्वयं अंतर विरोधों में जीती हुई किसे बहला रही हैं ये? तय है खतरा इधर नहीं है अंकु, खतरा जिधर है या उधर से ध्यान हटाने की साजिश का एक अंग है। सच तो यह है अंकु, नारे लगाने वाली ये महिलाएं, स्त्री की अस्मिता की चिंता में दोली होती ये भगिनियां, घरों में अपनी हुकूमत का भ्रम पोषे रहने के लिए न जाने किन किन संबंधों के मुखौटों में स्त्री को वे सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित रखने से नहीं हिचकिचाती जिनकी वकालत का दावा है उनका। मैं ऐसे छद्म पर थूकती हूँ, यह हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। जब तक कि हम अपनी संकीर्णताओं से मुक्त नहीं होंगे, स्त्री की इज्जत प्रतिष्ठा मोम की भांत मामूली सी आंच पाकर पिघलती रहेगी। इतना अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है तुम्हारा? अवैज्ञानिक नहीं, अनुभवजन्य है। यह समझने की कोशिश नहीं है, अरसे पूर्व तिलक से इसी विषय पर किसी संदर्भ में जमकर विवाद हो चुका है मेरा। दुख तो इस बात का है कि स्त्री होकर तुम स्त्री के प्रति इतनी भ्रांत धारणाओं से ग्रस्त हो। जो कुछ ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या वही और उतना ही सत्य है? स्त्री की संकीर्ण मनोवृत्ति के पीछे आधारभूत मनोविज्ञान को परखने पढ़ने की कोशिश कभी की है तुमने कि वह ऐसी क्यों है? नीता की तीखी ठहरी हुई दृष्टि में उपहास का भाव छल छलाया, मगर उपहास भाव से विचलित न होती हुई अंकु ने बात आगे बढ़ाई। जाहिर है कि उसकी कुंद दृष्टि और प्रतिद्वंदी मानसिकता के पीछे सदियों पुराना व दासित्व भाव है जो उसे सुरक्षा, सम्मान, पूजित जीवन जीने के भ्रम में झुंझुना सा पकड़ा दिया गया ताकि वह संगीताओं के कुहासे में जकड़ी हुई कृतज्ञ और समर्पित सी पुरुष के सामंती इरादों के चक्रव्यूह में फंसी घुटती रहे। जिसके दिल दिमाग को घर की चार दीवारी तक ही व्यापक और गहरा होने दिया गया, उस औरत से तुम एकदम से क्या उम्मीद करती हो? यह जागरूकता की नन्ही सी लौ उम्मीद बधाने और आश्वासन करने के लिए काफी नहीं है कि वह कुछ एक तनी मुट्ठियों में संगठित होकर समाज में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने निकल पड़ी है। सोचो, आधुनिकता की जिस परिभाषा को तुम जी रही हो, जीना चाहती हो, क्या तुमने अन्वेषित और अर्जित की है? नहीं, दरअसल वह परिभाषा अधिकार, आधुनिकता, समता और स्वतंत्रता के नाम पर पुरुषों द्वारा ही अखबारों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, फिल्मों, पोस्टरों, स्लाइड्स के माध्यम से स्त्री को सौंपी जा रही है। बड़ी चतुरता से कायाकल्प के बहाने जिंस को जिंस बनाए रखने का षड्यंत्र। स्पष्ट है स्त्री को आगे भी अपने अधीन बनाए रखने के सामंती इरादों को वह इन हथकंडों से सिद्ध कर रहा है। क्या यही स्त्री को चाहिए? यही आधुनिकता बोध स्त्री को चेतनापूर्ण बनाएगा, कुरीतियों से भिड़ने की ताकत देगा? स्त्री अभी इस्तेमाल हो रही है और तथा कथित भद्र, संपन्न, महत्वाकांक्षी, आधुनिक कहलाने का शौकीन एक शिक्षित स्त्री वर्ग ठीक तुम्हारी तरह इन परिभाषाओं को आत्मसात कर पुरुषों से बराबरी का दम भजी रहा है। दुख तो यह है, आज का अधिकांश पढ़ा लिखा विचारशील होने का दावा करता हुआ स्त्री समाज, स्त्री स्वातंत्र, स्त्री समानता और उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ता हुआ भी नहीं जानता कि वे अधिकार वस्तुतः क्या हैं, कैसे होने चाहिए, किस रूप में चाहिए, उसकी सामाजिक छवि कैसी हो। इन दो चरम स्थितियों के बीच आंखें खुली रखकर समाज से अपने रिश्ते की बात तय करनी है। मैंने यह नहीं कहा तुम्हारे कम कपड़े पहनने से स्त्री की सामाजिक छवि धूमिल होगी। मैं तो मानती हूँ अब तक स्त्री की कोई सामाजिक छवि है ही नहीं। संघर्ष ही सारा यही है, चिंता भी कि उसकी सामाजिक छवि होनी क्या चाहिए। मैं जब ऐसा कहती हूँ तो मेरा तात्पर्य सिर्फ तुम्हारी विचारशीलता के बंद किवाड़ों पर दस्तक देना भर है, ताकि इस्तेमाल की राजनीति को तुम समझ सको, सावधान हो सको, क्योंकि तुम निश्चित लड़ने में समर्थ हो। दृष्टिपूर्ण संघर्ष में मेरी आस्था है। सच नीता, मेरा वश चले तो मैं इन व्यवसायियों पर मुकदमा दायर कर दूं और सभी को बरसों जेलों में सड़ने के लिए डलवा दूं, ताकि यह तुम्हारे दिमाग का फितूर है, कोई किसी का इस्तेमाल कर सकता है। कल क्या था, आज वह कितना है, इसे मैं कतई नहीं ओढ़ती बिछाती, और मैं सोचती हूँ औरों को भी यही करना चाहिए। आखिर लड़कियाँ इतनी छुई मुई क्यों हैं, क्यों वे सेक्स से आक्रांत हैं? इस देश में हालत यह है अंकु कि किसी लड़के का किसी लड़की को गहरी नज़र से देख भर लेने मात्र से उसकी पवित्रता नष्ट होने लगती है। क्यों? पुरुष उसे क्या दे रहा है, वह किन चीज़ों की हकदार है? यह कटोरा लेकर भिक्षाटन से नहीं प्राप्त होगा, उसे सबसे पहले अपने भीतर की कुंठाओं से मुक्त होना है, दृष्टि परिमार्जित करनी है, यानी सेक्स से पवित्र अपवित्र होने की भावना से स्वयं मुक्त होना है। तभी, केवल तभी वह समाज में मनुष्य की तरह जीवित रह सकती है, बराबरी पर। आखिर इसी समाज में पुरुष वर्जनाहीन जीवन कभी भी सूरता नहीं कि वह नष्ट हो गया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, समाज में अब उसका कोई स्थान नहीं। स्त्री क्यों नहीं मुक्त होती इन फरेबी मर्यादाओं से? जिस दिन वह कुंठाओं से मुक्त होगी उसके सारे कष्ट कट जाएंगे, वह नए आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगी, निर्भीक विचरण कर सकेगी। यह हुआ जब उसके मन मस्तिष्क से दूर हो जाएगा, पुरुष के हाथों से वे सारे कार्ड्स निकल जाएंगे जिनके बूते वह स्त्री को घर खेत खलिहान गली मोहल्ले स्कूल दफ्तर और समाज में दबोचने को उद्यत रहता है, जीवन के हर क्षेत्र में उसे उद्वयम दर्जे की मानसिकता में झिलाता है। बस इतना होने की भयंकर जरूरत है, तुम पाओगी पुरुष अपनी औकात पर पहुंच गया है। स्त्री की सामाजिक छवि को दूषित करने के लिए तुम हम जैसे आधुनिकाओं को कोस रही हो, पुरुषों को कोस रही हो। उस स्त्री को क्यों नहीं कोसती जो फेरे लेते ही तोला भर सिंदूर के रूप में पति की खोपड़ी पर बाकायदा बैठाए दासित्व भाव को जीने के में गौरव अनुभव करती है। अनपढ़ औरत को छोड़ भी दें तो विश्वविद्यालय से डिग्रियां लेकर निकली ये छोकरियां मांग में पुरुष को सजाकर बैठाए रखने को इतनी आतुर क्यों होती हैं? पुरुष से स्वतंत्र होना है तो पहले उन्हें सिंदूर पोछना होगा, बिछुए त्यागने होंगे, दासित्व के प्रतीक चिन्ह। यह इस्तेमाल अधिक खतरनाक है, उससे तो पहले मुक्त कर लो उन्हें। यह हल नहीं है, इसकी आवश्यकता किस हद तक है, मगर वर्जनाहीनता के रूप में नहीं। और तुम्हारी दूसरी बात कुछ जरूर सोचने पर विवश करती है। चलो औरों की छोड़ो, बात मुझ पर हो रही थी, मैं उसी पर लौटना चाह रही हूँ और उसका जवाब भी देना चाह रही हूँ। तुमने जो कम कपड़ों की व्यवस्था पर प्रश्न लगाया है, कोई व्यवस्था नहीं थी मेरी। हाँ, बिकनी पहनने की बात आई, मुझे आपत्ति नहीं हुई। आखिर मैं जब भी तरणताल में तैरने जाती हूँ धोती पहन कर नहीं तैरती। जब मैं निजी जीवन में तैरने के लिए वन पीस तरण पोशाक या बिकनी का उपयोग करती हूँ तो तैरने के किसी भी दृश्य को उसी पोशाक में देने मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? हाँ, जिन्हें इस तरह के दृश्यों को करने में संकोच अनुभव होता है, शोषण महसूस होता है, इस्तेमाल की बू आती है, वे विज्ञापनों में सिर्फ प्रेशर कुकर जाम जेली मैगी और शरबत बेचें। कोई मजबूरी नहीं है कि वे बिकनी पहने, अगर वे इसे मजबूरी के रूप में बयान करती हैं तो निश्चय ही अवसरवादिता है, सत्म है। और यह तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इन दृश्यों से स्त्री का कुछ नहीं बनता, बिगड़ता। फिर तुमने उस फिल्म के कलात्मक पक्ष को एकदम नज़रअंदाज कर दिया। शायद, उसने बहस से कटने के मूड में हाथ खींचे। नीता की भौहें चढ़ गई, यह जवाब नहीं है। कला और अश्लीलता के मध्य विभाजन रेखा क्या है, जटिल मुद्दा है और हम निरपेक्ष होकर इस विषय पर बात नहीं कर सकते। मेरी समझ पर संशय है। अधैर्य तो है, तुम जो कुछ करती हो सामान्य जन के संदर्भ में उसे सोचने समझने का कतई प्रयत्न नहीं करती। यह व्यक्तिवादी रवैया है नीता, तुम्हें जो कुछ पहन कर अश्लील नहीं लगता, तरणताल की सुविधा का तर्क उसके साथ जुड़ा होने के बावजूद मुझे अश्लील लगता है। वह सब अश्लील होता है कि जिसे देख कर मन में अश्लील प्रतिक्रिया हो। इरादों की कलात्मकता की आड़ में छिप पाना या छिपा पाना कठिन है। अभिव्यक्ति बड़ी पारदर्शी होती है। तलाटी का रोम रोम सतह सा आंखों की सीमा में पसर आता है। चाहे जितनी अवधारणाएं रस्ते परोसते रहो, हाँ फिर दोहरा रही हूँ, तुम्हारी खजुराहो वाली दूसरे नंबर की फिल्म सचमुच कलात्मक विज्ञापन फिल्म है। परिपूर्ण, अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल, ऐसी फिल्में नहीं कर सकती तुम। इस बात को सोचकर ही हंसी आ रही है कि पोशाकों के प्रचार हित बनाई गई फिल्म में पोशाकें ही अदृश्य हैं। अगले ही पल अंकिता का स्वर अवसाद से टूटता हुआ प्रतीत हुआ। स्त्री की अस्तित्व की तलाश तब तक पूरी नहीं होगी नीता, जब तक वह वर्गों में बंटकर निजी स्वार्थों और सुविधाओं में उलझी विभाजित होकर जीती रहेगी। नीता ने गहरी शुभ्ध दृश्य उसे देखा, अबोले ही उठी और ड्रायर का प्लग लगा, अलमारी के शीशे के सामने खड़ी हो बालों के गुच्छे मरोड़ मरोड़ कर उनका गीलापन सुखाने लगी, किसी आकार में ढालती सी। जब भी सामने होते हैं, सामने होते ही बहुत कम हैं, लेकिन जब भी होते हैं इधर ऐसा ही होने लगा है कि उसके भीतर की उष्मा पक्ष विपक्ष से बटने लगती है। लगता भी है उसे नीता का अपना जीना है, जीवन शैली है, उसमें असंतोष का कोई सिरा झांकता नहीं नजर आया कभी। उसे छद्म लगता रहे तो लगे, नीता उससे रत्ती भर नहीं दरकती। बहरहाल इस असुखद संवाद से बचना था उसे, संभव नहीं हो पाया। जानते हुए कि खूंटे से बधे रहकर न स्वस्थ बहस हो सकती है, न सही गलत का सूक्ष्म स्वीकार विवेचन, जो मनवाए भले न एक परिणाम अवश्य निचोड़ कर रख दे, कुछ भी नहीं हुआ। एक बदलाव भीतर जन्म ले रहा है, दबे पांव अपने आप, हस्तक्षेप दखल नहीं प्रतीत होता अब उसे। फिर यही कि ये हस्तक्षेप और कुछ नहीं, कंधे पर हाथ के स्पर्श से उसे अपने होने की अनुभूति से गुजरने देना है। आगे कोई बात नहीं हो सकती, और अब मिस्टर भोजराज के प्रस्ताव के विषय में बताने का न उत्साह मन में शेष है, न औपचारिक सूचना दे पाने की सामान्यता। वह जानती है कि इस सूचना से नीता को हार्दिक खुशी होती, असीम विजय मिश्रित खुशी। मिस्टर भोजराज से संपर्क के संकोच को उसी की आग्रह से तो निरस्त किया था, बाद में विदित होने पर आहत होगी, आखिर छुपाई क्यों उससे इतनी बड़ी बात। प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर उसने ठीक सिर के ऊपर लगे हुए विशाल सूचना पट पर नजर डाली। अध्याय 5। पश्चिम एक्सप्रेस के आने का समय 4:20 दिया हुआ था। वह 4 समझे बैठी थी। पूछताछ काउंटर पर जाकर यह भी पता कर ले कि गाड़ी सही समय पर आ रही है या नहीं। आम तौर पर पश्चिम एक्सप्रेस नियत समय पर ही आती है, पर पूछ लेने में हर्ज ही क्या है। कुर्सी की पीठ से टिका हुआ व्यक्ति कुछ उबा सा बैठा हुआ है। कांच के कटाव के करीब गर्दन झुकाकर उसने पश्चिम एक्सप्रेस के विषय में जानना चाहा। पश्चिम एक्सप्रेस ठीक समय पर आ रही है? उबासी भरते हुए उसने बगल में रखे हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई इबारत की ओर उंगली उठा दी। खड़िया से लिखी हुई इबारतें इतनी धुंधली हो रही थीं कि कोशिश के बावजूद न वह उन्हें पढ़ पाई, न अनुमान ही लगा पाई कि क्या लिखा हो सकता है। मजबूरन कांच के कटाव से पुनः उसने अपना चेहरा सटा दिया। मेरी दृष्टि कमजोर है जरा, पढ़कर बताने का कष्ट करेंगे? करेंगे। कौन सी गाड़ी मालूम करनी है आपको, आने वाली कि जाने वाली? गाड़ी का नाम भी भूल गए आप? 50 गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं मैडम, किन किन का नाम याद रखूँ? कष्ट न हो तो फिर से बता दीजिए। पश्चिम एक्सप्रेस, उसकी बेहूदगी पर बेतरह क्रोध आया। आधा घंटा लेट है, कारण? दुर्घटना। एक आध लोग उसके पीछे आ खड़े हुए थे, सुनकर वे चौंके, एक साथ जिज्ञासाएं उछली। दुर्घटना? कैसी? कहाँ? पक्की खबर नहीं, मगर उड़ते उड़ते पता लगा है कि एक आदमी गाड़ी के नीचे कटकर मर गया। ओह, फिर गाड़ी और लेट हो सकती है। आदमी मरा है, टक्कर थोड़ी ही हुई है, किसी ने कहा तो सुनकर उसके रोए खड़े हो गए। एक सिहरन सी कौंधी देह में तत्काल हट दी वहां से। कितनी विचित्र बात है, दारुण सत्य। आदमी के लिए आदमी की मौत एक खबर भर है, सामान्य। महत्वपूर्ण है गाड़ी का विलंब होना, चिंता का विषय है गाड़ी का देरी से पहुंचना। यह भी कि आदमी के कटने से गाड़ी नहीं रुकती, चलती रहती है, रुकती है तो पटरी से मात्र लाश उठने तक। यात्री उसने सुना होगा, स्तब्ध हो पल भर फिर चौंके होंगे, मरने के लिए कोई अन्य जगह नहीं सूझी हतभागे को। कुछ चेहरे करुणा विगलित हो दरवाजों पर लटक आए होंगे, कुछ उतरकर पटरियों पर उछकने लगे होंगे, कुछ खिड़की के सीकचे तोड़कर ठीक पटरी पर पड़ी हुई लाश तक पहुंच जाना चाह रहे होंगे, कुछ को बियाबान परेशान कर रहा होगा, कुछ को स्टेशनों पर प्रतीक्षारत स्वजनों की याद सताने लगी होगी, कुछ घटना की तह तक जाने को उद्विग्न हो उठे होंगे, हत्या है या आत्महत्या, ऐसा भी होता है, होता नहीं हो रहा है, मारा ससुरों ने और लाके पटक दिया पटरियों पर, गाड़ी ने सीटी दे दी अचानक, चेहरों पर आहत और खुशी दौड़ आई। किसी को फुर्सत नहीं कि जो चिंगारती चली आ रही गाड़ी के पहियों के नीचे कुचला गया, जिनमें से ही कोई एक था, उनमें से ही कोई एक था, बल्कि कोई और नहीं वह स्वयं। उसने अपने लिए एकांतिक मृत्यु न चुनकर जीवन से हार कर जीवन के प्रवाह तले ही कुचल कर मरना मंजूर किया, पटरियों पर जीवन की अनवरत यात्रा का स्पंदन अनुभव करते हुए। उद्घोषणा ने उसकी तन्मयता भंग की। प्लेटफार्म पर हलचल थिरकने लगी, गाड़ी आ रही है शायद, इतनी जल्दी। प्लेटफार्म के बीचों बीच थाल सी टंगी घड़ी की ओर उसने अविश्वास से देखा। विलंब की सूचना के मुताबिक गाड़ी 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति ने झूठ तो नहीं बोला, हो सकता है गाड़ी ने कवर कर लिया हो, किसी कुली से न पूछ ले। घबरा उठी कि उसे गाड़ी आने पर जिस जगह खड़ा होना चाहिए था खड़ी नहीं हो सकी और गाड़ी अचानक आ गई। तेजी से पीछे जाते हुए एक कुली को उसने टोका, पश्चिम एक्सप्रेस है भैया? नहीं, सौराष्ट्र मेल है भाई, पश्चिम एक्सप्रेस इसके पीछे आएगा। जान में जान आई। धक्का मुक्की से बचने के ख्याल से वह पीछे हो ठीक दीवार के निकट जाकर खड़ी हो गई और ऊपर लगे पोस्टरों को एक सिरे से देखने लगी। उफ, हर नाइस्ट, कितना अश्लील पोस्टर है, फिल्म कैसी होगी, यह पोस्टर से अनुमान लगाया जा सकता है। बॉडी का बटन खोलकर खड़ी हुई लड़की और बगल में नंग धड़ंग लेटा हुआ कामुक पुरुष, जागरूक औरतें विरोध में इन पर कोलतार न पोती तो क्या करें, देखने दे सभी को यह नंगा नाच, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्त्रियों के एक वर्ग को अपनी बॉडी का बटन खोलकर खड़े होने में कोई संकोच नहीं होता। छी, कैसी समझ है यह। अचानक उसे आभास हुआ कि वह हर नाइट्स के पोस्टर पर ही कब से निगाह गड़ाए खड़ी हुई है और कुछ लोग उसे देख नहीं रहे बल्कि घूर रहे हैं अजीब तरह से। वह पोस्टरों के पास से हटकर टहलने सी लगी। कनखियों से उसने इर्द गिर्द देखा। हाँ, लोग उसे देख रहे हैं, अब तक हर किस्म के लोग यहाँ आते हैं, शायद औरतें भी। सौराष्ट्र मेल अभी आती है, कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम एक्सप्रेस और लेट हो जाए। वैसे समय कम नहीं है उसके पास, व्यर्थ में आशंकित हो रही है। 6:30 तक नीलाम पहुंचना है उसे, आराम से पहुंच जाएगी, दादर से खार है ही कितनी दूर। अलबत्ता टैक्सी वाले अवश्य झिकझिक में 8-10 मिनट डकार सकते हैं, मामूली बात है, उनसे निपटना विकट समस्या हो गई है, निकट की सवारियों में उनकी कोई रुचि नहीं होती, दूर की सवारी फंसाने की फिराक में रहते हैं वे, ताकि यात्रियों से मनमाना पैसा ऐंठ सकें। अधिकांश के मीटर बिगड़े हुए होते हैं, न भी बिगड़े हुए हों तो भी न जाने कौन सा दंद फंद करते हैं कि मीटर में अनुमान से तिगुने पैसे होते हैं। नज़दीक वालों को टैक्सी पकड़ने अक्सर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक आना पड़ता है, दुर्गत ही समझो। हल्ला मचा दो, कुछ एक दिनों तक मामला पुलिस चौकसी में रहा, पुलिस की ढील हुई नहीं फिर वही ढाक के तीन पात। बम्बई में टैक्सी वालों को दिल्ली की अछूत देखते देखते लगी है, वरना स्थिति वाकई इतनी निरापद थी कि आंख मूंद कर गाड़ी में बैठ जाइए, किसी प्रकार का कोई घपला नहीं होगा। सौराष्ट्र मेल प्लेटफार्म बुहार चुकी है, गहमा गहमी को चुंबक से खींच लिए गए लोहे के बुरादे की भांत कहाँ खड़ी रहे जहाँ सोचा था कि पीछे जाकर खड़ी हो जाएगी और सामने से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक डिब्बे पर नजर रखेगी। अब यह विचार नहीं जम रहा, हो सकता है मेहता दरवाजे पर न खड़ा हो, प्लेटफार्म के सामने वाली किसी खिड़की पर भी न बैठा हो। मेहता को कतई उम्मीद नहीं होगी कि वह उसे लेने स्टेशन आएगी, अपने पहुंचने की सूचना भेजने के बावजूद उसके आग्रह पर आ रहा है, इसीलिए उसने पहुंचने का तार भेज दिया। दरवाजे और खिड़की पर वही व्यक्ति सतर्क से हो बाहर झांक रहा होता है, जिसे प्रतीक्षा होती है कि कोई उसे लेने स्टेशन पहुंच रहा होगा। तब यात्रियों के निकलने के मुख्य द्वार पर खड़ी रहे, टैक्सी वहीं से मिलती है, मेहता भी वहीं से निकलेगा। जितने डिब्बों पर वहां खड़े रहकर नजर डाली जा सकती है, देख लेगी। डिब्बे डिब्बे दौड़ना उसके वश का नहीं। किसी को छोड़ने जाना जितना वेदना हमें लगता है, लेने जाना उसी बिंदु तक कष्ट कर। मिस्टर होजराज वाले मुद्दे पर मेहता से तत्काल बात करना जरूरी नहीं होता तो शायद वह स्टेशन उसे लेने न आती। वह अवश्य चाहती रही है कि अंतिम निर्णय करने से पूर्व मेहता जैसे अनुभवी व्यक्ति से परामर्श कर ले। मेहता कल पहुंच रहा होता तब यह लाभ उसे प्राप्त न होता। यह अलग बात है कि मेहता से सहयोग की उम्मीद उसे हर हाल में है। 99% निर्णय मन ही मन हो चुका है, बस मेहता की स्वीकृति की हाँ की दरकार है उसे। एक यह भी बात होती है कि आपके निर्णय को कोई छोटी सी हाँ उचित होने का प्रमाण पत्र दे दे तो आपका आत्मविश्वास मीलों लंबा सफर तय कर लेता है। दरअसल लोग दुर्बल अधिक बनाते हैं, दुर्बल न भी बनाए उचित अनुचित अनुकूल प्रतिकूल के तर्कों में उलझा कर दुविधाग्रस्त अवश्य कर देते हैं। हरिंद्र ने यही नहीं किया। कितना भयावह होता है अपनी ही दुनिया की उपहास में तनी उंगलियों की कानाफूसी को झेल पाना। यातना की इस पगडंडी से वह अभी गुजरी है, दिन महीनों नहीं वर्षों, पगडंडी के सीने में अटे पड़े भटकटैया पर पग रखते हुए, मगर टीसते कांटों की फांसों को किसी से न बांट कर वह उनसे मुक्ति की खातिर स्वयं हाथ में सुई लेकर अपने तलों से बीनने बैठ गई थी। मेहता और उसके बीच अंतर है तो सिर्फ स्थितियों का। किसी को किसी के पलायन का मूल्य चुकाना है और उस जैसे को आत्मसम्मान की मांग का, वरना उससे उसका घर छूटता, सरस्वती कॉलेज की लेक्चरशिप से वंचित होती, ऑब्जर्वेशन से दूध में पड़ी मक्खी की भांत निकालकर फेंक दी जाती, फिल्म रस में सदैव अस्थायी बनी रहती। कोई एक लड़ाई सीमा तक विखंडित नहीं करती, उसके प्रहारों का प्रतिरोध कर लेता है व्यक्ति, झेल जाता है उसकी मार को, मगर भीतर बाहर एक साथ खुल गए मोर्चों पर लड़ पाना इतना आसान नहीं होता। मेहता के भीतर संघर्षरत यह व्यक्ति आकर्षित करता है उसे। क्या दूं मेम साहब, पता नहीं कब वह बुक स्टॉल पर आ खड़ी हुई, नया धर्मयुग दूं? उसने इनकार में सिर हिला दिया। शारिका, फेमिना, इंडिया टुडे, वह पत्रिकाएं निकाल निकाल कर उसके सामने डालता जा रहा है। संकोच उमड़ आता है। उलटने पलटने का अर्थ है कोई एक पत्रिका खरीदना, आगे बढ़ दे। खरीद कर क्या करेगी, अंग्रेजी हिंदी की अधिकांश पत्रिकाएं एजेंसी में देखने पढ़ने को मिल जाती हैं, नियमित आती भी हैं एजेंसी के विज्ञापनों के चलते। वह तो ठीक है, मगर समय कैसे कटे। गाड़ी 10 मिनट के करीब और लेट हो गई है, अब और लेट नहीं होगी। स्टेशन मास्टर से वह मिलाई है, उसका कहना है कि गाड़ी बिरार स्टेशन छोड़ चुकी है और लगभग 20 मिनट में दादर पहुंच रही है। न होगा, आरंभ का पिछला अंक ही खरीद लेगी, नया अंक मंगल तक आएगा, वैसे घर पर पिछले अंक की 2 प्रतियां पड़ी हुई हैं, नहीं शायद एक ही है फाइल की हुई, एक वह बाजार में आते ही खरीद लेती है। अंक को तुरंत देख पाने की लालसा का संवरण नहीं कर पाती, अपना स्तंभ पढ़ लेने का भी कि कैसा छपा है, कहीं कुछ काटा फूटा तो नहीं। पिछली बार कुछ सामग्री बढ़ गई थी, स्थानाभाव के चलते काटना आवश्यक हो गया होगा, मगर जिस भी उप संपादक ने उसे संपादित किया इतनी निर्ममता से काटा कि लेख से उसका विचार पक्ष ही उड़ा दिया, पढ़ते ही उसका माथा घूम गया, क्रोध से आग बगुला हो उठी। तत्काल विरोध में संपादक के नाम एक लंबा खत लिख डाला कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए कि संपादन के अधिकार का अर्थ यह नहीं होता कि लेख जहाँ से जी में जाए काट दो। संपादक सीपी सिंह जी का तुरंत उत्तर आया था, वे पता लगा रहे हैं कि किसने यह मूर्खता बरती है, इस हरकत के लिए उन्हें वाकई खेद है। दूसरी प्रति मानार्थ आरंभ के कार्यालय से आ जाती है। हाँ याद आया, दूसरी प्रति घर में इसलिए नहीं है कि वह उसने दफ्तर में किरपेकर को पढ़ने के लिए दी थी। चलो कोई बात नहीं, एक और हो जाएगी तो हर्ज ही क्या है, आरंभ का पिछला अंक होगा। उसने कुछ खरीदने की तसल्ली का झुंझुना स्टार वाले की ओर बढ़ाया। हाँ मैडम है, आजकल हिंदी का इंडिया टुडे खूब वीक रहा है। वह उसका आशय समझ गई, इंडिया टुडे लगता है इन्हें अच्छा कमीशन देता है, कमीशन अच्छा देता है तो निश्चित ही उसे बेचने में इनकी दिलचस्पी अधिक होगी, मुझे आरंभ ही चाहिए। वह आरंभ की प्रति पत्रिकाओं के ढेर से निकालने लगा। उसने इत्मीनान से मनचाही पत्रिकाएं पलटनी शुरू कर दी। मिस्टर भोजराज की अब तक बातचीत से यह आभास हो रहा है कि वे उसे अपनी एजेंसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रखना चाहते हैं। जिस समय अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित होगा, सबसे ज्यादा अम्मा की याद आएगी, उनकी अनुपस्थिति खलेगी। यह संभव होता कि अनुबंध पत्र लेकर सुबह उड़ती और उन्हें दिखाकर उनके चेहरे की रोशनी अपनी आंखों में भरकर संध्या को पलट पड़ती। वह सचमुच उड़ जाती, एकदम उन्हें अचरज में डालती। कहती नहीं, परंतु मन ही मन सभी महसूस करते रहते हैं कि अप्रकट में वे उसी की चिंता में दिन रात घुलती रहती हैं। पिछले वर्षों में देखते देखते उनकी काठी दीमक लगे तने सी खोखली हो गई है। बस दो ही प्रबल इच्छाएं हैं उनकी शेष, कि किसी साधु संत, देवी देवता, पीर फकीर की अनुकंपा से वह अपने जीवन में स्थापित हो जाएं, पूर्णतः आत्मनिर्भर, तो वे उसे मृगशाला और कमंडल दान करेंगी, उसे चुनरी चढ़ाएंगी, नारियल फोड़ेंगी, दरिद्रों को जिमाएंगी, कथा रखवाएंगी। ब्याह को लेकर उनकी जिद लगभग समाप्त ही हो गई है। शायद मन में अच्छा अभी सिर उठाती हो, प्रकट में वे न जिद ठानती हैं न दबाव डालती हैं। शायद ये सोचकर कि वे अगर ऐसी जिद ठानेंगी तो संभव है परिवार का प्रत्येक सदस्य बिट्टी पर मानसिक दबाव बन जाए। अम्मा में आया यह परिवर्तन घर में सभी को चित्त किए हुए है। हालत यह है कि अब इस संदर्भ में न कोई उसे जिक्र करता है, न परामर्श देता है, न छेड़ता ही है। एक काम कर सकती है, अनुबंध पत्र की फोटो स्टेट कॉपी करा उसे त्वरित डाक सेवा से भैया के पास भिजवा देगी कि यह कॉपी वह अम्मा के हाथ में दे दे और कॉपी के साथ उनकी तत्काल खींची हुई तस्वीर उसे भेज दे, उनके चेहरे के भावों को दर्शाती हुई। भैया उन्हें इलाज की खातिर ला क्यों नहीं रहा, काश वह उन्हें बंबई ले आए। उसकी यह अदम्य इच्छा प्रत्यक्ष पूरी हो सकती है, अनुबंध पत्र सीधे लाकर उनके हाथों में पकड़ा देती। लो अम्मा, नौकरी का पक्का रुक्का, अब खुश। छोटी मोटी नौकरी नहीं है तुम्हारी बेटी की, पूरे 4,500 नकद, सुविधाएं ऊपर से। अब न तुम्हारी बेटी को अनुवादों की मजबूरी झेलनी होगी, न शब्द गिनकर आलू और प्याज के मोल तोल की तरह अनाप शनाप कापियां। और सुनो अम्मा, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगी, नानुकुर नहीं चलेगी। अम्मा की चिपड़ी आंखों में झलझल संतोष पनिया आया। तुम्हारे कौनो इच्छा है बिट्टी, है तो सुनी भला। एक तो ये कि तुमको अब मैं हवाई जहाज की यात्रा जरूर करवाऊंगी, अपने पैसे से, भले इंदौर से बंबई या बंबई से इंदौर। आई ना, विस्फारित नेत्रों से अम्मा ने उसे देखा। क्यों ना, हम न बैठब हवाई जहाज में, हमका डर लागी। लो डर कैसा, काहे मनई उलट पुलट नहीं हुई जात वही माँ। वह ठठा कर हंस पड़ी। हंसे का बात है, सीधे तीर की नाई नहीं धसत चला जा है आसमान में, धुत कहीं उल्टा पुल्टा नहीं होता, भ्रम है तुम्हारा यह। अरे फर्क ही नहीं कर पाओगी कि गद्दी वाली बस में धसी बैठी चली जा रही हो या हवाई जहाज में उड़ रही हो। सच्ची और क्या, चलो फिर हिम्मत कई लेब। आखिरकार अम्मा ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। अच्छा, डरने की नाटक रचकर तुम हमें उल्लू बना रही थी। दूसरी इच्छा सुनी, अम्मा अचानक चिबिल्ली की छोरी में परिवर्तित हो उसकी आपत्ति के प्रति अनसुनी हो आई। द्वारिका जी और सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा करना चाह रही थी ना तुम? इच्छा तो है, तो उसने उकसाया। तो क्या मतलब जॉन, कुछ मनई सोचत है, सब पर हो ही जात है का? पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, ईश्वर जाने। चिबिल्ली किशोरी एकदम बूढ़ा आई। होगा अम्मा, होगा, मैं पूरा करूंगी, संकल्प है यह मेरा। बस तुम फटाफट स्वस्थ हो जाओ, बंबई से गुजरात है ही कितनी दूर। चलो ऐसा करेंगे, बंबई से मद्रास हवाई जहाज से ले चलूंगी तुम्हें, वहां से हम बस से चले चलेंगे सेतुबंध रामेश्वरम, ठीक रहेगा ना? पश्चिम एक्सप्रेस आने की उद्घोषणा ने सोच पर जैसे हथौड़े से प्रहार किया। हाथ की पत्रिका यथास्थान रख व पर्स से पैसे निकालने लगी। कितने देने हैं आरंभ के? 6 मैडम, 6 ही तो देने होते हैं, जानती हैं कीमत, फिर भी पूछ बैठी बेभान से। भाया को अभी तक उसने मिस्टर भोजराज के प्रस्ताव के विषय में नहीं लिखा, यही सोचकर कि पहले अनुबंध हो जाए, फिर वह अम्मा और उसकी प्रतीक्षा में भी तो है। डिब्बे एक के बाद एक आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, मेहता कहीं नहीं दिख रहा, फिजूल आंखें गड़ाने से फायदा। वह मुख द्वार पर अपने को केंद्रित रखे, कहीं ऐसा न हो वह यहाँ से वहाँ हो और वह निकल जाए। मेहता के घर वाले कितने खुश होंगे, सभी उसे लेकर चिंतित हैं, माँ विशेष रूप से। बम्बई छोड़ने के 10-15 रोज तक मेहता की कोई कुशलक्षेम नहीं पहुँची तो माँ ने घबराकर उसे दफ्तर फोन किया। कोई खबर उसके पास भी नहीं थी, नहीं आई थी तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई थी। उचित ही लगा था उसके जाने का निर्णय, शायद मानसिक विश्राम कहीं ढूंढ ले, पर माँ के फोन ने चिंतित कर दिया था। माँ ने कहा था उसके लौटने तक हम ये घर बेच देना चाहते हैं, इतनी अच्छी जगह मुख्य सड़क के ठीक सामने, वो सब सुख सुविधा है, पन वंदना का ब्याह भी करना है ना। अफ्रीका से जो परिवार श्री और श्रीमती ठक्कर उसे देखने आने वाले थे ना, उनका क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, अचानक अंजना बेन ने पूछा बहू ने कौन से कमरे में आत्मघात किया था। उससे कुछ कहा नहीं गया, इसीलिए मैं यहाँ उसके लिए लड़का नहीं देख रही। आखिर हमारा समाज है ही कितना बड़ा, कोई अभी नहीं सोचता कि बहू के आत्मघात से वंदना का ब्याह का क्या लेना देना। वंदना कैसे दोषी हो गई उस सब के लिए? वंदना कहाँ है? मामी के पास बड़ौदा गई है, फोन आया था कल शाम, वहीं रहकर कंप्यूटर प्रशिक्षण लेने का इरादा है उसका, कैसे रोकूं बताओ उसको? छोकरी मुंह नहीं खोलती मगर मैं माँ हूँ, बच्चे के मन की पीड़ा नहीं महसूस कर पाऊंगी? अब मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होता यह घर, दुख है तो इस बात का बेटा, यह घर वंदना के पापा का खरीदा हुआ है। सोचा था कि आँख मूंदे ही इस घर को छोड़ पाऊंगी, पीछे बच्चे चाहे साथ रहें चाहे बेचकर अलग अलग घर ले लें, इतनी कीमत मिल ही जाएगी दोनों भाइयों को, वंदना का क्या है जो हाथ उठा कर दे दे। बड़े जमाई और सुधा को अफ्रीका में अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं, 3-4 बरस में आते हैं देश, वहाँ भी सरकार ने उनका जीना हराम कर रखा है, परेशान हैं वे लोग। पिछले खत में सुधा ने लिखा था कि वे लोग ब्रिटिश नागरिकता पाने की जोड़ तोड़ में हैं, उनका बबलू लंदन में ही पैदा हुआ था ना। क्या कहती माँ से? अजीब से असमंजस ने घेर लिया, जो कुछ वे सोच रही थी शायद वह किसी हत्यारी गुफा से सुरक्षित बाहर निकलने जैसा कोई सुराग सुझा दे उन्हें, शायद नए सिरे से उनका परिवार जीवन जीने के आयाम अर्जित कर ले, अर्जित करना ही होगा, आदि बनाना होगा स्वयं को उसके लिए, वरना क्रूर अतीत ज्यों की भांत उन सभी का रक्त चूस चूस कर फूलता रहेगा और तृप्त होकर जब गिरेगा निर्मम किसी और को इन देहों के स्वाद का पता दे देगा। कोई अंत होगा इस सिलसिले का? अभी हफ्ते भर पहले उसने स्वयं माँ को फोन किया, ग्लान से आक्रांत होकर अपनी व्यस्तता के चलते वह इस बीच न माँ को देखने जा पाई न फोन पर ही खैर खबर ले पाई। हालांकि फोन करते समय बराबर आशंकित थी कि यह नंबर नदारद मिलेगा, कटा हुआ। अब तक वे लोग कहीं और स्थानांतरित हो गए होंगे, न्यू बॉम्बे में कहीं, यही आभास दिया था माँ ने अपनी बातचीत में। मेहता के छोटे भाई की नौकरी भी उसी तरफ है, बर्मा शेल में, काफ़ी सहूलियत हो जाएगी उसे आने जाने में। माँ ने यह भी आभास दिया था कि मकान का पैसा वे मकान में ही लगाएंगी, अतः उनकी पूरी कोशिश है कि वे एक ही बिल्डिंग में एक ही माले पर लगे हुए दो फ्लैट खरीद लें। विनोद की बीवी शायद अधिक दिन उनके साथ गुजर न कर पाए। यह तो आप ठीक ही कह रही हैं, अपने रहते हिस्सा देकर। उसे माँ की यह व्यवहार कुशलता बुद्धिमत्ता पूर्ण लगी थी। अपने न रहने पर पारिवारिक कला का बीज बनने से बेहतर है कि अपने सामने अपनी उन चीज़ों को टुकड़ों में देखने का मादा पैदा कर लेना जिन्हें बनाने में उसकी पूरी जिंदगी होम हो गई हो। फोन लग गया था। कौन? वंदना। वंदना की आवाज़ प्रतीत हुई उसे, वंदना ही थी। वंदना को फोन पर पाकर विस्मय हुआ उसे। कब आई तुम? परसों ही दीदी। छुट्टी पर? छुट्टी क्यों? तुमने बड़ौदा में कंप्यूटर प्रशिक्षण में दाखिला नहीं लिया? सोचा था दीदी। वंदना का स्वर अनायास भारी हो आया। क्या मतलब? अच्छा इरादा था तुम्हारा, भविष्य में काम आता, कर क्यों नहीं लिया? नौकरी के चक्कर में बड़ौदा में कंप्यूटर के प्रशिक्षण के लिए फॉर्म आज सब भर दिया था कि अचानक माँ ने हैंडलूम हाउस से आया मेरा नियुक्ति पत्र भेज दिया। अक्टूबर में साक्षात्कार दिया था मैंने, बस मजे मजे में ही, क्या पता था कि चुन ली जाऊंगी। ज्वाइन कर लिया हैंडलूम हाउस? कब का? तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? किया था दीदी, आप थी नहीं अपनी कुर्सी पर। संदेश देना उचित नहीं लगा, सोचा फिर फोन कर लूंगी, दोबारा भी वही हाल हुआ। चलो बधाई, हालांकि कंप्यूटर कोर्स कर लेती तो निश्चित ही आगे चलकर अच्छी नौकरी का डौल बैठता। ठीक कह रही हैं, वह तो करूंगी, इरादा नहीं बदला है मेरा। पता लगा रही हूं, कहीं संध्या कक्षाएं लगती हों तो तुरंत दाखिला ले लूंगी। माँ कहाँ है? घाट कूपर बड़ी मामी के घर गई हुई है, लौट आना चाहिए था अब तक उन्हें। घर बदला नहीं अब तक, शायद कुछ दिनों और रुकना पड़े, कोई अड़चन। खरीदार बयाना देकर मुकर गया। बयाना देकर मतलब? उसने यह फ्लैट खरीदने का इरादा बदल दिया, कहकर कि यह घर अपशकुनी है।